ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिन की ब्राजील यात्रा संपन्न हो गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया गया, इसलिए इन देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए धन, सतत विकास और प्रौद्योगिकी उपलब्धता जैसे मुद्दों पर केवल आश्वासन दिए जाते हैं।
भारत और ब्राजील ने सदैव करीबी समन्वय के साथ काम किया है। दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारा सहयोग न केवल ग्लोबल साउथ बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रासंगिक है। हम मानते हैं कि ग्लोबल साउथ की चिंताओं और प्राथमिकताओं को वैश्विक मंचों पर रखना हमारा नैतिक दायित्व है।
एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जारी घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल के आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि ब्रिक्स देश सीमा पार आतंकवाद, आतंकवाद के लिए धन उपलब्ध कराने और आतंकियों को पनाह देने सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए संकल्पित है। ब्रिक्स नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करने तथा आतंकवाद के मामले में दोहरे मानदंड अपनाने की प्रवृत्ति को खारिज करने की अपील की है।
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं।
प्रधानमंत्री ने राजधानी ब्राजीलिया में ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा से मुलाकात की। उन्होंने घोषणा की है कि अगले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाकर 20 अरब डॉलर किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में आज नामीबिया के विंडहुक पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति नेतुम्बो नंदी नदत्वाह के निमंत्रण पर यह प्रधानमंत्री मोदी की पहली और भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की 3री नामीबिया यात्रा है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने राजधानी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने शहर में 900 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले स्मार्ट क्लासरूम को भी मंजूरी दी है। मीडिया को जानकारी देते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने व्यापक डिजिटल क्लासरूम विस्तार योजना के बारे में बताया।
स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स के लिए एडवांस स्टेज में हमारी सरकार टेंडर तक पहुंच चुकी है, जो CM3 स्कूल में 2446 स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स लगेंगे। 5 चरणों में 9वीं से लेके 12वीं तक के 18,966 क्लासरूम्स विल बी एडेड।
हज समिति ने हज 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यात्री आधिकारिक हज पोर्टल या फिर हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ऑनलाइन आवेदन विंडो 31 जुलाई तक खुली रहेगी। शिशु और छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त दुनिया के पहले मलेरिया रोधी उपचार को मंजूरी दे दी गई है। दवा निर्माता नोवार्टिस को कॉर्टेम नामक कंपनी नई मलेरिया दवा के लिए स्विट्जरलैंड प्रशासन से स्वीकृति प्राप्त कर चुकी है। अफ्रीका में अगले कुछ हफ्तों में इस दवा का उत्पादन और वितरण शुरू होने की उम्मीद है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपने वेव एक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत प्रतियोगिता शुरू की है। इसके लिए 30 जुलाई तक कला सेतु चुनौती पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और आवेदन किया जा सकता है। नेपाल के रसुआ में सोमवार रात अचानक आई बाढ़ में डूबे 9 लोगों के शव बरामद कर दिए गए हैं। एक व्यक्ति का शव मंगलवार रात चितवन से बरामद किया गया। नेपाल पुलिस मुख्यालय के अनुसार 19 और लोग लापता हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान देश के पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड में गुरुवार तक तेज वर्षा जारी रहेगी। स्पेन में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नम के शानदार प्रदर्शन की बदौलत व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में शीर्ष वरीयता हासिल कर ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।